أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود وجيه محمد وعلى آله وصحبه محمد فقہی احکام میں مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو جاری ہے اور اس میں بہت سے احکام ایسے بھی آئیں گے اور اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں جس سے براہ راست خواتین کا ویسے اتنا تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن معاشرے میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف ان کی نگاہ ہونی چاہیے کہ جس میں ان کے پاس معلومات مکمل ہوں, کیونکہ مرد حضرات ہیں, ان کو چیزیں بتانی ہوتی ہیں. بعض اوقات جیسے یہاں پر داڑھی کے موضوع پر بھی درس ہوئے تو آپ کے توسط سے مردوں کی طرف بھی پیغامات پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے سگریٹ اور نشہ آور چیزوں کے جو فقہی احکام ہیں اس سلسلے میں بھی آج ہماری گفتگو ہوگی. اچھا, اس میں دو موضوعات ہیں. ایک تو سگریٹ کے حوالے سے ہے کیونکہ یہ اس میں زیادہ مسائل تھے, اس وجہ سے اس کو ایک الگ موضوع کے طور پر لیا گیا, اور دوسرا جو ہوگا وہ دیگر نشہ آور چیزیں جو آج کل بہت کامن ہیں, انشاءاللہ وہ اگلے نشست اور اگلے درس میں بیان کی جائیں گی. اچھا, اب دیکھیے, سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اسلام میں کچھ نشے ایسے ہیں کہ جو کہ صریحاً حرام ہیں, اس کا ایک قطرہ بھی پینا جائز نہیں ہے, جیسے کہ شراب ہے. اور اس قدر اس کی مذمت بیان ہوئی ہے, جو اگرچہ آج کا موضوع نہیں ہے لیکن گفتگو تھوڑی آگے بڑھانے کے لیے, کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کو ایک گھر میں جمع کر دیا گیا ہے اور اس کی کنجی شراب کو قرار دیا گیا ہے, اور خداوند عالم 40 دنوں تک شرابی کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے, اور اس دوران شراب نوشی کے درمیان وہ مر جائے تو کافر ہو کر مرتا ہے. اور ملعون ہے وہ شخص جو کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھے کہ جہاں پہ شراب پی جاتی ہو. خود اس دسترخوان پر بیٹھنے کے الگ سے فقہی احکام ہیں جو انشاءاللہ جو اگلی گفتگو ہوگی ہماری اگلے اتوار کو, اس میں اس کی تفصیل آئے گی. اور یہ جو نشاور چیزیں, البتہ اس کے اندر براہ راست سگریٹ شامل نہیں ہوتی ہے, وہ بھی آگے چل کر اس کے فقہی احکام بیان ہوں گے, لیکن عام طور پر وہ چیزیں کہ جو کہ مسکرات کہلاتی ہیں, نشاور چیزیں کہلاتی ہیں, چرس ہے, افیم ہے, گانجا ہے, اور اس طرح کی جو اور چیزیں ہیں, شراب وغیرہ, تو اس کے متعلق ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا میں نشہ والی چیزوں سے سیراب ہونے والے پیاسے مریں گے, پیاسے ہی اٹھائے جائیں گے اور پیاسے ہی جہنم میں داخل کیے جائیں گے. تو بہت شدید ان لوگوں کا عذاب ہوگا. اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے ہمارے پاس یہاں پر سوالات آتے ہیں, خواتین بہت زیادہ پریشان ہیں, نوجوانوں میں اور مرد حضرات میں خاص طور پر یہ بیماری اس طرح کی نشاور چیزوں کی, خاص طور پر شراب کی, بھی بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے, 20 سال پہلے اگر شراب کی کوئی بات آتی بھی تھی تو عام طور پر علماء حضرات صرف نظر کر کے اس سے گزر جاتے تھے کہ معاشرے میں مومنین کے درمیان یہ رائج نہیں تھا. لیکن اب اس جس طرح کے سوالات آ رہے ہیں اس سے معلوم یہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ یہ چیز رائج ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں. تو بہرحال یہ تو نشاور چیزیں ہو گئیں. اچھا, کچھ ایک تو پہلا فقہی حکم اس میں یہ ہے کہ کون کون سی نشاور چیزیں پینی تو حرام ہے, استعمال ان کا حرام ہے, کھانا پینا ان کا حرام ہے, لیکن وہ نجس بھی ہیں یا نہیں. تو یہ دماغ میں رہے. بہرحال آیت اللہ سیستانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ صرف اور صرف شراب نجس ہے. اس کے علاوہ دوسری تمام وہ چیزیں کہ جو کہ انسان کو مست کرتی ہیں, یعنی نشہ لے کر آتی ہیں, وہ نجس نہیں ہیں, لیکن ہر حال میں بہرحال ان کا استعمال حرام ہے. مثلا چرس ہو سکتا ہے, یعنی نشاور چیزوں میں تو شامل ہے البتہ, اور اس کا پینا بھی حرام ہے, لیکن یہ کہ بہرحال نجس نہیں, ہاتھ پہ ہمارے لگ جائے, ہماری جیب میں رکھی ہوئی ہو اور وہ کسی چیز سے ٹکرا جائے, یا مثلا کسی مایا چیز کے اندر مکس ہو جائے, تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی, لیکن اس کا پینا ضرور حرام ہوتا ہے سوائے شراب کے. البتہ اس کی تفصیل وہ انشاءاللہ ہماری اگلی نشست میں ہوگی. البتہ سگریٹ جو ہے, دیکھیے یہ جو ہے पहले तो ये कि कुछ बुजुर्ग हजरात बैठ के पीते हुए नजर आते थे, और लेकिन अब देखने में आ रहा है कि खवातीन भी सिगरेट जो है पीती हैं, बुजुर्ग खवातीन पंजाब में तो काफी कॉमनली देखने में भी नजर आता है, खवातीन इस अंदाज से सिगरेट पी रही हैं, बूढ़ी खवातीन या और इलाकों के अंदर भी इस तरह से देखने में आता है नजर। लेकिन बहुत से माशरे ऐसे हैं कि जहां पर नौजवानों के अंदर भी, चाहे वो खवातीन की ही क्यों ना हो, यहां पे भी बहुत चीज कॉमन हो गई है, जरा इलीट क्लास के अंदर निस्बतन ज्यादा है, या बहुत ही ज्यादा जो माशरे में माशी लिहाज से जरा पसमानदा तबकात होते हैं उसके अंदर भी ये चीज आ गई, मिडिल क्लास वगैरह के अंदर इतनी अभी चीज कॉमन नहीं हुई। और बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं जो आगे चलकर हमारी गुफ्तगू इस पे आएगी भी, कि उन इलाकों के अंदर तो, यानी जैसे सीरिया है, वहां पर तो बाप भाई बेटा वगैरह सब लोग जिस तरह ड्राइंग रूम में बैठ के सब चाय पीते हैं, इस तरह से सिगरेट वगैरह पीने का भी रिवाज है, और वहां इसको मायूब नहीं समझा जाता है। तो बहरहाल ये माशरों के एतबार से भी अलग अलग चीजें, लेकिन अब खवातीन के अंदर भी ये चीज आती जा रही है। अच्छा, 46% मर्द जो है वो सिगरेट पीते हैं और 6% औरतें सिगरेट पीती हैं इसके मुकाबले में, यानी आप देखें तो बहुत बड़ा यानी एक फर्क है कि औरतों में ये चीज बहरहाल निस्बतन कम है मर्दों की निस्बत। अच्छा, जर्नल ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उसका बाकायदा एक जर्नल निकलता है और साइंटिफिक उसके अंदर चीजें आई हैं जिसके अंदर एथनिक ग्रुप्स के अंदर सिगरेट कितनी कॉमन है उसके एतबार से चीजें बयान हुई हैं। मसलन पाकिस्तान के माशरे के एतबार से बात हो रही कि सिंधी लोगों में, मुहाजिर में, पठान में, बलोची में, पंजाबी में या औरों में, तो आप लोग सुनकर देखकर भी हैरान होंगे जो उसका डेटा जमा किया गया है, स्मोकर्स की जो औरतों और मर्दों की तादाद है वो सबसे ज्यादा तमाम एथनिक ग्रुप्स में जो लिसानी ग्रुप्स पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मुहाजिर अफराद के अंदर है, मुहाजिर मर्दों में भी और मुहाजिर औरतों में भी, और उसके बाद फिर पंजाब है, और उसके बाद फिर सिंध वगैरह और बलूचिस्तान है, और फिर दीगर और कम्युनिटीज के अंदर है। लेकिन इसके अंदर भी आप देखें कि स्मोकर्स की जो तादाद है वो मेल और फीमेल दोनों में मुहाजिरों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा है। अभी हम यहाँ कोई लिसानी टाइप की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक वैसी बात कर रहे हैं कि कौन से एथनिक ग्रुप्स के अंदर सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई और कहां तक बात पहुंच गई है। अच्छा, बहुत से लोग, ये होता है कि शुरू शुरू में देखिए कोई भी शख्स माँ के पेट से तो सिगरेट पीता हुआ पैदा नहीं होता है, बहुत से लोग सिर्फ दोस्तों वगैरह के साथ ट्राई के तौर पर करते हैं, तो हर 5 में से 3 अफराद वो होते हैं कि जो सिर्फ ट्राई करने में या दोस्तों का साथ देने के लिए, हर 5 में से 3 अफराद बाद में इसके लाजमी एडिक्ट हो जाते हैं। एक इक्का दुक्का ही जो है समझे 2 अफराद बचते हैं कि जो कि बस उसी ट्राई की हद तक रहे और उसके बाद फिर उन्होंने नहीं पी सिगरेट को। अच्छा, बच्चों के अंदर भी चीज होती जा रही है, बच्चों ने भी पीनी शुरू कर दी है, तो इससे इस लिहाज से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। अभी आगे चलकर फिक्री अहकाम भी बहुत सी चीजों के बयान होंगे। अच्छा, अभी हम सबसे पहले आगा सिस्तानी का फतवा भी फिलहाल मैं बयान नहीं कर रहा, वो आगे चल के बयान होगा, सिगरेट को सरीही तौर पर हराम करार देने के, अभी आप देखेंगे आगा सिस्तानी का भी और दीगर महाराजे का भी, सिर्फ 2 फतावों को छोड़कर, उसमें ये होता है कि अगर नुकसान पहुंचने का आपको वो है, हर शख्स के अपने मुकल्लफ के ऊपर है कि वो देखे मुझे कितनी सिगरेट पीने से नुकसान हो सकता है, अभी चलकर उसकी तफसील आएगी। लेकिन 2 फतावे ऐसे हैं, एक तो मौजूदा महाराजे में से एक का है कि जिसमें उन्होंने हराम करार दिया है, यानी सेहत के एतबार से और दीगर बहुत सारे पहलुओं के एतबार से, और एक सियासी फतवा गुजर चुका है, यानी 2 फतवे सरीहन तंबाकू पीने के या मसलन सिगरेट पीने के, हुक्का पीने के, यानी जिसकी जितनी भी अकसाम होती हैं दुखानियात, इसके अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। इसमें सिगरेट के मायने ये नहीं कि जहां सिगरेट बयान हो रहा है तो वहां हुक्का, शीशा, बीड़ी और इस तरह की चीजों की जो है ना वो इजाजत मिल जाएगी, नहीं, जहां ये सब एक ही हुक्म में। तो हुरमत तंबाकू के 2 फतवे जो हैं बहुत ज्यादा मशहूर है आजकल के जमाने में, तो आयतुल्ला शेख नासिर मकारिम शिराजी, इनका एक जमाने तक वही वाला फतवा था जो दीगर महाराजे का है, वो ये फरमाते थे कि हर शख्स खुद ही मुकल्लफ देखे कि उसको कितने सिगरेट पीने में या कितने अरसा सिगरेट पीने में नुकसान हो सकता है, اور مکلف کے اپنے اوپر چھوڑا گیا تھا کہ وہ خود اپنا صحت کے اعتبار سے اس کو دیکھے. لیکن چند سالوں سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے فتوے کو تبدیل کر دیا ہے اور مکمل طور پر سگریٹ کو پینا، سگریٹ کو استعمال کرنا ہر لحاظ سے، بلکہ اس کی خرید و فروخت، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی نے اس سلسلے میں اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے، فتوے کو تبدیل کیا ہے، اور اس کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دی ہے. اسے پینا جو بالکل ابتدا سے سگریٹ شروع کرنا چاہ رہا اس کے لیے بھی، جو پہلے سے سگریٹ پیتا آ رہا اس کے لیے بھی حرام قرار دیا ہے. خود آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی اس وقت 95-96 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ حیات مراجع میں سے ایک ہیں. تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے موجودہ زمانے میں، جنہوں نے صریحی طور پر حرام قرار دے دیا ہے. اچھا، ان کا شروع میں ہم نے کیوں بیان کیا؟ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر. آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی سے یہ سوال علماء نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ کہتے تھے، پھر آپ اپنے اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے، اور اب مکلف کے اوپر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اب آپ نے خود سے ہی تشخیص موضوع کر کے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصلاً اس کے اندر ایسے جو دیندار ڈاکٹرز ہیں اور جو اور اساتذہ ہیں یونیورسٹیز کے، جو ریسرچ اسکالرز ہیں، انہوں نے ایسے دل دہلانے والے اعداد و شمار ہمارے سامنے پیش کیے کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کے نقصانات سے وہ پینے والا بھی اور اس کے اطراف میں جو افراد رہتے ہیں وہ بھی اس کے نقصانات سے معمون نہیں. تو اس لحاظ سے اب ہم نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے، اور یہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ جو ابھی آگے چل کر چاہے آغا سیستانی کے مقلدین بھی اگلے مسائل میں ان کا جو فتاوے سنیں گے کچھ دیر بعد کہ ان کا نظریہ کیا ہے، لیکن آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے جو دلائل دی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہ دلائل کیا ہیں، آپ نے فتوے کو پہلے ہی کچھ تھا اور اب کچھ اور کر دیا ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ آپ نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا؟ انہوں نے آپ اپنے فتوے کے دلائل بیان کی، اور اس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. سب سے پہلے تو قرآن کی اس آیت کو پیش کیا، کہا کہ انسان اپنے آپ کو بعض اوقات، یہ خودکشی کے متعلق بھی ہے، یہ بہت سے لوگ عام طور پر اس میں اس کو لے کر آتے ہیں. ہم نے جب یہاں پر عزاداری کے فقہ احکام کے اندر زنجیر اور قمع وغیرہ کے فتاوے بیان کیے تھے، تو اس کے اندر اس بات کو لے کر آتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا اس ماتم سے کوئی ربط نہیں ہے. تفصیل جو ہے وہ اسی وقت ہم نے بیان کی تھی. بہرحال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سگریٹ پینے کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہلاکت کی جو ہمارے پاس خبریں وہ اس قدر دہشت ناک ہیں اور اس قدر خوفناک ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں اپنے فتوے کو تبدیل کرنا پڑا ہے. تو انسان واقعتاً اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. پھر انہوں نے کس طرح سے ہلاکت میں ڈال رہا ہے اس کے بھی کچھ دلائل جو ہے وہ نقل کیے ہیں، اور فرماتے ہیں اپنے فتوے میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی، دیکھیے پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی تھی اور 4 سال یہ جنگ عظیم رہی تھی، جو 1914 سے 1918 تک. اس میں فرماتے ہیں 4 سال میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے جنگ عظیم اول میں، پہلی جنگ عظیم میں 4 سال میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جو جنگ عظیم دوم ہوئی تھی 1939 میں، 1939 سے 1945 تک 6 سال وہ رہی تھی، اس میں ابھی میں آگے چل کر بتا دوں، اس میں تقریباً 8 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے. اچھا، پہلی جنگ عظیم میں فرماتے ہیں کہ 4 سال میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 2020 سے پہلے ہر 4 سال میں سگریٹ سے 2 کروڑ لوگ ہلاک ہو رہے تھے سالانہ. سالانہ 2 کروڑ ڈیتھس جو ہیں وہ ڈیو ٹو سگریٹ اسموکنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزیں اس میں ہو رہی ہیں 2020 سے پہلے. یعنی اس میں پہلی جنگ عظیم کتنی تباہ کن پہلی جنگ عظیم تھی، لیکن اس میں 4 سال میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے، لیکن 2020 سے پہلے ہر 4 سال میں سگریٹ سے 2 کروڑ لوگ ہلاک ہو رہے تھے. اور فرماتے ہیں کہ 2020 کے بعد یہ تعداد سالانہ 1 کرو�ڑ ہو گئی، یعنی 4 کروڑ سال، 4 سال کے اندر 4 کروڑ. اور جنگ عظیم دوم جو ہوئی تھی وہ 6 سال میں 8 करोड़ लोग हलाक हुए थे। देखिए अभी एक जो बीमारी चल रही है, अभी मैं उसका नाम इस वजह से नहीं ले रहा हूँ बीमारी का, क्योंकि आमतौर पर उसके अंदर बड़ी चेकिंग वगैरह है, ताकि बहुत सारी हमारी जो फेसबुक वगैरह के ऊपर और जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी हैं और उसके अंदर वो लफ्ज आ जाता है उस बीमारी का खास जो आजकल फैली हुई है, तो उसको खास तौर पर चेक किया जाता है। हत्ता कि हमने कुछ अर्से पहले आयतुल्ला शेख हाफिज शेख बशीर नजफी का एक दर्स उस बीमारी के मुतालिक लगाया था, तो उन्होंने जिमनन इस बात को कहा था कि इंसान अपने ईमान को कवी करे और बहुत सारे हिफ्जान सेहत के असूलों का ख्याल रखे तो बीमारी उसको नहीं लगती। तो हमारी वो रिमूव कर दी गई यूट्यूब की तरफ से वो वीडियो भी, कहा कि हमारे उस स्टैंडर्ड जो हमारे हैं उसके खिलाफ जा रही है, और किसी भी तौर पर वो जो चीज भी बहरहाल उसके पीछे मकासद हो सकते हैं मुमकिना, वो उनके उसके खिलाफ उनको महसूस हुई तो उन्होंने उड़ा दी, इस वजह से मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। तो उस लिहाज से देखें तो इस बीमारी का इसकी उस लिहाज से अमवात की शरह उतनी नहीं है कि जितनी कि सिगरेट स्मोकिंग से हो रही है। हर 4 साल में मसलन 4 करोड़ लोग हलाक हो रहे हैं। ये आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने फरमाया कि 2020 से पहले जो है ये तादाद सालाना 1 करोड़ हो गई। अच्छा, इसमें भी 1 करोड़ में भी 30 लाख अमरीकी इसमें मरते हैं और 70 लाख दीगर ममालिक से। फिर अच्छा, इसके अंदर भी अगर देखें तो हर फरमाते हैं, अब मैं इस वजह से ये चीज पहले पेश कर रहा हूं आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी का, कि हर 4 सेकंड के बाद एक शख्स जो है वो हलाक हो जाता है ड्यू टू टोबैको स्मोकिंग या उससे रिलेटेड डिजीजेस से, हर 4 सेकंड में एक आदमी। लेकिन आपको उतना उसके खिलाफ इकदाम माशरे के अंदर नजर नहीं आएंगे, बस वो हो जाएगा एक मजाहिया किस्म का, एक वो आ जाता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह, और उसको सिगरेट पीता हुआ आदमी भी अगर टीवी के ऊपर आ रहा होता है तो बस ये लिखना जरूरी है, बाकी कोई और इकदाम नहीं। इसके पीछे क्या मकासद है, क्या जबरदस्त इकोनॉमिकल वॉर जो है इसके पीछे, वो भी आगे चलकर उन्होंने जिक्र की। तो 20th सेंचुरी से पहले 100 मिलियन टोबैको डेथ्स जो है 20th सेंचुरी में, और कह रहे हैं 21st है, अगर यही ट्रेंड बिल्कुल जारी रहा स्मोकिंग का लोगों को, तो 1 बिलियन टोबैको डेथ्स हो जाएंगी इस पूरी सेंचुरी में, यानी 21वीं सदी में, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। 1 बिलियन सोचे, पहले 100 मिलियन था, उससे बढ़कर ये 1 बिलियन हो जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया एक खास एक बस बीमारी के पीछे अपनी सारी चीज लगा रही है, और इसके पीछे इसके ऊपर कोई और मौकिफ जो है वो कर सकता है कि तमाम चीजों से आंखें बंद करके फकत एक ही चीज को क्यों किया जा रहा है, ये एक बहरहाल एक शक व शुबे वाली बात बनती है। तो बहरहाल देखिए, इंसान जिस वक्त भी सिगरेट पी, जैसे कि यानी ये समझे इतनी अमवात का आपने जो भी रेशो सुना, ये आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने हत्ता के फरमाते हैं कि जो उसके और अतराफ में रहने वाले अफराद हैं, हत्ता के शिक्म मादर का जो बच्चा है वो भी इससे मुतासर होता है, जो भी पैदा भी नहीं हुआ उसके कितने बर्थ डिफेक्ट्स और इन चीजों के साथ, जो कि वो मदर के जो के पीती है या पैसिव स्मोकिंग के तौर पर उसको पीनी पड़ती है, मतलब शौहर पी रहा है वो कमरे के अंदर बैठ के और अब्बा हुजूर पी रहे हैं और वो उसमें धुआं जा रहा है जिस्म के अंदर, या और अफराद जैसे कि अभी आगे चलकर आप खुद सुनेंगे कि तकरीबन 100 में से 70% डेथ तो एक्टिव स्मोकिंग करने वालों की होती है, और जो पैसिव स्मोकर होते हैं जो सूंघ रहे हैं बेचारे इधर उधर बैठे हुए, 30% डेथ्स उनके अंदर भी इस वजह से। तो बहरहाल ये तमाम चीजें जो नुकसान दें, तो पहली तो चीज वाला तुलकु बे अदियकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो, एक कुरानी दलील पेश की थी आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने अपने तफसीली फतवा में। दूसरी दलील पेश की है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है ला ज़रारा वला ज़रारा फिल इस्लाम। पैगंबर अकरम की हदीस कि इंसान को ना तो नुकसान उठाने का हुक्म है और ना नुकसान देने का हुक्म है, ना नुकसान किसी को दे और ना खुद नुकसान उठाए। उलमा अहले सुन्नत में भी कंजुल उम्माल के अंदर मुल्ला अली मुत्तकी हनफी ने इस रिवायत को लिखा है, इसके अलावा हमारी भी मल्ला याजरुल फकी में है और असूल काफी में भी है, बाज जगहों पर अल्फाज थोड़े से जरा आगे पीछे भी हैं, लेकिन बहरहाल ये रिवायत इस अंदाज से मौजूद है। आयतुल्ला सिस्तानी ने अपनी तकरीरात के अंदर पूरा एक फिकही उसूल बन गया है ये हदीस के अल्फाज, ला जरारा वला जरारा फिल इस्लाम, इस्लाम में ना तो जरर पहुंचाने का हुक्म है और ना जरर उठाने का हुक्म है। इस पे आयतुल्ला सिस्तानी का पूरा तकरीरात मौजूद हैं, समझे एक लिहाज से एक पूरी किताब सिर्फ फकत इस हदीस की एप्लीकेशन के ऊपर लिखी। तो उन्होंने इसी हदीस को आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने बेस बनाया है और कहा कि इस्लाम में क्योंकि ना नुकसान उठाने का हुक्म है और ना नुकसान देने का, और ये दोनों चीजें सिगरेट के अंदर पाई जाती हैं। खुद भी वो शख्स जो है वो नुकसान उठाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। और सिर्फ अमेरिका के एतबार से अगर देखें, सिर्फ कह रहे हैं कि तकरीबन 4,80,000 सिर्फ अमेरिका के अंदर हर साल सिगरेट स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज में डेथ होती है, जिसके अंदर 1,37,000 38,000 के करीब लंग कैंसर में ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, और फालिज हो जाता है 15,300 अफराद को, और 36,000 कैंसर ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। इसके अलावा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो फेफड़ों वगैरह की बीमारियां होती हैं 1,00,000 से ऊपर, उसके अंदर हार्ट डिजीजेज जो सिगरेट स्मोकिंग से होती हैं 1,58,750, यानी आप सोचें कि 5,00,000 डेथ्स सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर, कितना बड़ा एक रेशो। और फिर पूरी दुनिया में उसे एतबार से अगर करें तो और अलग, यानी अगर कोई बहुत ही चेन स्मोकर हो तो कुछ ही अरसे बाद, ये दो लंग्स हैं आपको बताने के लिए, ये सिगरेट स्मोकिंग करने वाले शख्स का लंग बन जाता है कुछ अरसे बाद जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है, और वो देखिए कि ओरिजिनल जो लंग का कलर है। तो इस हद तक ये कितनी खौफनाक चीज एक जो है वो जिस्म के अंदर जा रही है। और ये जो इसको सिम्बॉलिकली उसको किया गया कि देखें आप ये जो अपनी सिगरेट एस्ट्रे के अंदर बुझा रहा होता है, समझे कि वो उस तरफ जा रहा है कॉफिन की तरफ, कि बिलाखिर इस शख्स को उसके अंदर जाना है। तो और इससे मुतालिक इतनी बीमारियां हैं कि अब ये आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जो इससे अफेक्ट नहीं हो रहा हो। ये आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी का सारा मैं बता रहा हूं कि उन्होंने जो अपने फतवे के अंदर इसमें जो तबाहकुन और दिल दहला देने वाले उन्होंने कहा कि जो आदाद शुमार हमारे पास आए कि कोई जिस्म का अज्व और ऐसा नहीं है, ऑर्गन ऐसा नहीं कि जो इससे बहुत खतरनाक हद तक मुतासिर ना होता हो। और ये भी कहा जाता है वाकईतन कि अगर कोई शख्स सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना चाहे तो उसे चाहिए कि वो जहां पे सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो मरीज टर्मिनली इल हैं एक दफा जाकर वहां विजिट कर ले, वो खुद देख लेगा जाके कि किस तरह तरह से, यानी उससे कहीं बेहतर नहीं। इस तरह कहा जाता है अभी भी कि भाई ये जो बाईपैप और सीपैप वगैरह वो जो प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन के मास्क वगैरह लगाए जाते हैं और आदमी कितना उससे परेशान हो जाता है, उससे कहीं बेहतर है कि भाई उस पाइप को और मास्क को लगाने से बेहतर है कि ये नॉर्मल वाला मास्क लगा लें उस बीमारी से बचने के लिए वबाई, और ये वाली ट्यूब्स जो मुख्तलिफ वेंटिलेटर्स की और ये सब जो लगेंगी इससे कहीं बेहतर है कि इंसान सिगरेट स्मोकिंग को ही तर्क कर दे, जिससे रिलेटेड यानी वाकईतन हॉस्पिटल जो भरे पड़े हैं ऐसे मरीजों से। तो वो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो वहां जाकर एक दफा विजिट कर ले और अपने आप को, यानी अभी भी जो अफराद इसमें हैं बहरहाल सेहत के एतबार से अपने आप को इससे बचाएं। फिर फरमाते हैं आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी कि ईरान में 1 करोड़ अफराद रोजाना 3 अरब तुमान की सिगरेट पीते हैं। सिर्फ ईरान की बात बता रहे हैं, अभी पाकिस्तान का भी आगे चलकर मैं खुद ही जिक्र करूंगा। ईरान में 1 करोड़ अफराद रोजाना 3 अरब तुमान की सिगरेट पीते हैं। और फरमाते हैं आयतुल्ला नासिर मकारिम कि ईरानी हर साल 10 खरब तुमान से ज्यादा सिगरेट पे खर्च कर रहे हैं, 10 खरब तुमान। अब लोग उसको जो नॉर्मल रेट चल रहा होगा डॉलर में या पाकिस्तानी रूपीज में से आप कन्वर्ट करती रहिएगा, यानी ईरानी हर साल फरमाते हैं 10 खरब तुमान से ज्यादा सिगरेट के ऊपर खर्च कर रहे हैं। यानी ये समझे कि जो सिगरेट की जो वो है वो डॉलर और वो रूपीज को वो इस तरह से जला रहे हैं। और सिर्फ अमरीकी कंपनियां सालाना 60 खरब सिगरेट बना रही हैं। सिर्फ अमरीकी कंपनियां जो सिगरेट बना रही हैं उनकी तादाद 60 खरब सालाना है, 60 खरब। जो और कंपनियां बना रही हैं उसके अलावा उसको तो आप छोड़ ही दीजिए, वो हिंसा कहां तक जाएगा मुझे मालूम नहीं। सिर्फ उन्होंने अपने फतवे में जो जिक्र किए कह रहे हैं सिर्फ अमरीकी कंपनियां सालाना 60 खरब सिगरेट बना रही हैं, और अमेरिका में इनका 3% होता है और बाकी 97 दीगर ममालिक में जाती हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि 3% सिर्फ अमेरिका में और उसके अलावा 97% दीगर ममालिक में इसको कंज्यूम किया जाता है, और अमेरिकी कंपनियां सिर्फ सालाना 3 खरब डॉलर्स मुनाफा कमा रही हैं इसके ऊपर। बहरहाल कतई नजर उसके कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो या नहीं हो, इस वक्त कहा जाता है ना कि हर एक सेकंड के अंदर $1,000 पर सेकंड मुनाफा कमाया जा रहा है वैक्सीन वगैरह में भी। तो बहरहाल अमरीकी कंपनियां फरमा रहे सालाना $3 खरब का बिजनेस जो है वो कमा रही हैं, और पाकिस्तान में 615 अरब रुपए सालाना की सिगरेट पी जा रही है। ये जो हमारा गरीब तरीन मुल्क है, 615 अरब सालाना की सिगरेट यहां पर पी जा रही है, यानी अपनी सेहत भी खराब कर रहे हैं कोई। तो आप ये देखिए, तो एक तो पहला चीज आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी की हो गई, और ये दूसरा ये तो था सेहत के एतबार से, और माशी एतबार से भी कहा जाए इसको, उस एतबार से इसको हराम करार देने का फतवा। दूसरा तहरीम में तंबाकू का फतवा था मिर्जा बुजुर्ग शिराजी का, आयतुल्ला मिर्जा शिराजी, 1890 या 95 में इनका इंतकाल हुआ है। और आयतुल्ला मिर्जा शिराजी ये शेख मुर्तुजा अंसारी के शागिर्द थे, और खुद इनके अपने शागिर्द भी आयतुल्ला सैयद मोहम्मद काजमी यजदी, जिनकी ये उर्वतुल वुस्का किताब है, वो इन्हीं के शागिर्द थे। इसके अलावा मिर्जा तकी शिराजी, वो इन्हीं के शागिर्द थे। मुल्ला काजिम खुरासानी, वो इनके शागिर्द थे। आयतुल्ला शेख फजलुल्ला नूरी, मशरूता वाली तहरीक वाले, वो इनके शागिर्द थे। तो इतने बड़े बड़े और शागिर्द इनके थे, और ये खुद शेख मुर्तजा अंसारी के थे। इन्होंने एक सियासी फतवा दिया था सिगरेट और तंबाकू के सिलसिले में। उस जमाने में जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई थी इंडिया में, और जो अब ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों का है, और वहां पर आकर उन्होंने अपने पंजे गाड़ लिए थे सिर्फ तिजारती तौर पर, तो और उसके बाद पूरा कब्जा करते चले गए थे। तो इसी तरीके से एक ईरानियों के साथ भी इन्होंने मुआहदे किए थे यूरोप की कंपनियों ने, और वो तंबाकू यहां पर तंबाकू के जरिए ईरान में एंटर होना चाह रहे थे। तो आयतुल्ला मिर्जा शिराजी ये बुजुर्ग ने उन फतवा दिया इस सिलसिले में, और ये उनकी अपनी तहरीर है फतवे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्योम इस्तेमाल तंबाकू व तूतुन बे अय नहविन काना दर हुक्म मुहारबा इमाम जमान सलावातुल्लाह अलैह अस्त। फरमाते अल्योम आज के रोज इस तंबाकू और तंबाकू से रिलेटेड और जितनी भी इस तरह की चीजें हैं उनका इस्तेमाल करना ऐसा ही है जैसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से जंग की जाए। और उसके बाद ये बस मुख्तसर सा फतवा उन्होंने दिया, और पूरे ईरान के अंदर एक तहलका मच गया कि कितने लोग उस जमाने में एडिक्ट थे। हत्ता के जो उस जमाने में बादशाह था सुल्तान नासुरुद्दीन शाह काचार, ये उस जमाने में बादशाह था ईरान का, ये खुद भी तंबाकू का बहुत आदी था, बहुत ज्यादा तंबाकू पिया करता था, हुक्का पिया करता था, सिगरेट वगैरह पिया करता था। तो इन्होंने हुक्म जारी कर दिया, हत्ता के बादशाह की जो अपनी बीवी थी वो भी इसकी बहुत आदी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सब ने अपने अपने हुक्के तोड़ दिए, और बादशाह के महल से भी तमाम हुक्के गायब कर दिए गए। अब अगले दिन बादशाह ने आया और कहा कि मेरा हुक्का लेकर आओ, तो उसने कहा कि नहीं, हुक्के तो हटा दिए गए सारे। कहा किसके हुक्म से हटाएं? तो बादशाह की बीवी ने कहा सुल्तान नासिरुद्दीन शाह काचार की कि उसी के हुक्म से हटाए हैं जिसके हुक्म से मैं आपके ऊपर हलाल हुई थी, यानी मुज्तहिद के हुक्म से उसी ने यह हुक्म जारी किया है। बहरहाल बादशाह कुछ नहीं कर सका, और उसके बाद ये जो एक पूरी तहरीक है जिसे नहजत तंबाकू कहा जाता है, पूरे ईरान से जितने भी हुक्के थे सारे के सारे तोड़ दिए गए, सारे तंबाकू, और पूरी वो दुश्मनों की साजिश नाकाम हो गई कि ईरान में जिस अंदाज से वो लोग दाखिल होना चाह रहे थे। ये तहरीम तंबाकू का जो फतवा है, एक तो मैंने कहा कि सेहत के एतबार से जो उसके आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी का जो बिल्कुल यानी बिल्कुल दो टोक किस्म का जिसे फतवा कहा जाए, और एक सियासी नौयत का फतवा था आयतुल्ला हसन आयतुल्ला शिराजी का। तो बहरहाल ये दो उस लिहाज से बहुत ही अहम फतावे गुजरे। अच्छा, अब आ जाइए आयतुल्ला सिस्तानी क्या फरमाते हैं। अच्छा, इसके अंदर दो तरह के लोगों से आमतौर पर लोग सवाल पूछते हैं, कहा कि एक तो मुब्तदा के एतबार से और एक मोहताद के हवाले से। मुब्तदा के यानी जो बिल्कुल अभी सिगरेट नोशी शुरू करना चाह रहा है उसके लिए पीना कैसा है, और दूसरा मोहताद, मोहताद वो है जो पहले से पीता आ रहा है, अब आदी हो चुका है, बार बार पीता है, एडिक्ट हो गया है मसलन उसका, तो ये उलमा से आमतौर पर सवाल किया। और लोगों के दिमाग में ये आमतौर पर होता है कि, और मशहूर भी हुआ ये, बाज आयतुल्ला खुई के हवाले से भी बात मशहूर हुई थी, आयतुल्ला सिस्तानी के एतबार से भी मशहूर हुई कि जो पहली दफा पीना चाह रहा है उसके लिए पीना हराम है, जो पहले से पीता आ रहा है उसके लिए जायज है, ये इस किस्म की बात मशहूर हुई। तो देखिए, चाहे मुब्तदा हो यानी जो बिल्कुल इब्तदाई तौर पर हो, या मोहताद जो पहले से पीता आ रहा हो, बहरहाल ये कि अगर आहिस्ता आहिस्ता इसका नुकसान, यानी बिल्कुल इत्मीनान हो कि ये आगे चलकर, अभी पीते जाएंगे लेकिन यही चीज आगे चलकर नुकसान पहुंचाएगी, तो इसमें इस मसले के लिहाज से कोई फर्क नहीं बनेगा, चाहे इब्तदाई तौर पर कोई शख्स सिगरेट पीना शुरू कर रहा है या ये कि कोई पहले से पीता आ रहा है। सेहत के लिए अगर नुकसान चाहे मुस्तकबिल में ही क्यों ना साबित हो जाए तो अव्वल से भी उसका पीना हराम हो सकता है, लेकिन अभी नुकसान की भी बात अभी आगे चलकर आएगी। तो बहरहाल इब्तदाई तौर पर तो जाहिर है जिस्म के देखिए हर अजवीज के अंदर वो होता चला जाता है, दांत भी खराब होने लगते हैं, फेफड़ों की तो सूरत हाल इससे पहले आप देख ही चुके हैं। तो आका खुई से भी पूछे गए ये सवाल, आका सिस्तानी से भी पूछे गए कि मैंने अभी मसलन 3 महीने पहले से ही सिगरेट शुरू की है, और बहुत से अफराद से ये बात सुनी है कि ये सिर्फ इब्तदा जो लोग करें उनके लिए पीना हराम होता है, तो ये बात क्या सही है? तो वहां से जवाब आया कि नहीं, ये बात सही नहीं है, यानी ये इब्तदा वाला मसला और मोहताद वाला मसला ये आमतौर पर नहीं। और ये भी पूछा गया कि क्या इब्तदाई तौर पर तदखीन यानी यही सिगरेट वगैरह पीना या धुएं वाली जो चीजें जितनी भी हैं इस तरह से पीना, तो फरमाया कि इसकी हुरमत की कोई दलील नहीं है सिवाय इसके कि जरर बलीग किसी को हो, यानी नुकसान, सख्त नुकसान पहुंचने का इम्कान हो, तो फिर नुकसान, फिर यह हराम हो सकता है। फिर यह भी पूछा गया इब्तदाई तौर पर इसकी इब्तदा करना कैसा है, तो जवाब यही आया कि इब्तदा करना यानी अगर कोई नुकसान नहीं है तो इब्तदा करना जायज है, यानी कि अगर नुकसान ना हो। असल में मसला ये कि मुज्तहिदीन जो है ये उसके ऊपर यानी अकली चीजों के ऊपर, जो अकली असूल हैं उसके ऊपर इन चीजों को परखते हैं, वो बिल्कुल वो नहीं होते जज्बाती एतबार से, जैसा कि अभी यहां पे मुख्तलिफ उलमा आते हैं तो वाकईतन ये बात कहते हैं बड़े उलमा के हवाले से कि जब से ये एक आलमी वबाई बीमारी आई है, इस बीमारी ने एक फिकी उसूलों के अंदर भी एक तूफान बर्पा कर दिया है, यानी वो सारे अकलियात के ऊपर बेस करते हैं कि अगर नुकसान हो तो मसलन आपको वैक्सीन भी लगानी पड़ेगी, पड़ सकती है, और अगर नुकसान हो तो ये करना पड़ सकता है, और ये सारी चीजें अकली हैं। अकली यानी अतिब्बा जो कह रहे हैं, डॉक्टर हजरात जो कह रहे हैं, उकला जो कह रहे हैं, उसकी बात को मानना पड़ेगा। अब उकला की बिलफर्ज अगर कोई बहुत बड़ी तादाद यानी बायस्ड भी हो जाए, यानी उनको कोई चीज समझा दी जाए ऐसी जिस वजह से बात कर रहे हो, तब भी मुज्तहिद हमेशा यही मजबूर है इस बात कहने पे कि उकला जो कह रहे हैं उसके मुताबिक अमल करो। ये एक ऐसी चीज हो गई है, एक ऐसी बीमारी मुसल्लत हो गई है कि जिसने एक तहोबाला करके रख दिए बहुत सारे असूल भी। तो बहरहाल इसके अंदर नुकसान का जो मियार है वो सबसे ज्यादा चाहे मुस्तकबिल ही के अंदर क्यों ना हो। अच्छा, आयतुल्ला सिस्तानी से के मुताबिक यानी जो जवाब दिए जाते हैं उसमें कि अगर कोई इब्तदाई बंदे के लिए सिगरेट नोशी का क्या हुक्म है, तो अगर सिगरेट नोशी से उसे काफी जरर हो, काफी ज्यादा, अभी उसका मियार आएगा, तो अगर चाहिए जरर मुस्तकबिली में क्यों ना हो, मुस्तकबिल में होगा, तो मुब्तदा के लिए भी सिगरेट नोशी हराम है। लेकिन अगर वो कम मकदार में सिगरेट नोशी करता है जिससे काफी जरर वाकई नहीं होता तो फिर उसके लिए जायज है। मसलन इक्का दुक्का का भी कोई सिगरेट पी ले, अगर चाहे इस पे भी आगे चलकर हम एक गुफ्तगू करेंगे कि ओकला के नजदीक या डॉक्टर्स के नजदीक, अभी आगे चल के वो बात भी आएगी। तो मेयार क्या है, वो बहुत ज्यादा नुकसान है चाहे मुस्तकबिल में क्यों ना हो, बहुत मामूली सा नुकसान है। फिर अगला सवाल पूछा गया सिगरेट नोशी के आदि बंदे के लिए क्या हुक्म है, वो तो इब्तदा करने वाले के लिए था, तो फिर ये है कि सिगरेट नोशी के आदि इंसान को अगर सिगरेट नोशी जारी रखने से काफी जरर वाकई हो तो सिगरेट नोशी का तर्क करना जरूरी, काफी जरर अगर उससे हो रहा है। اور پھر اگلا سوال ہے کہ گھر، گاڑی، آفس میں ایسے مومنین کے قریب بیٹھ کر سگریٹ نوشی کرنا کیسا ہے جو سگریٹ نوشی نہیں کرتے، کیا یہ کام جائز ہے؟ تو جواب ہے کہ سگریٹ نوشی کرنے والے کو اگر یہ معلوم ہے کہ میری سگریٹ نوشی سے ساتھ والے مومنین کو اذیت ہو رہی ہے اور انہیں سگریٹ کے دھوئیں سے ضرر اور نقصان ہوتا ہے اور سگریٹ نوشی سے انہیں تنگی محسوس ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں سگریٹ نوشی وہاں کرنا حرام ہے. یہ عام طور پہ لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے اور گھر میں کمرے کے اندر بیٹھ کے پی رہے ہیں. جو لوگ بےچارے پریشان ہو رہے ہیں، یعنی کیونکہ میں خود بھی خدا کا شکر ہے کہ اس سے محفوظ ہوں، اور مجھے بہت بری بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے جس وقت کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، یعنی واقعتاً اذیت ہوتی ہے. تو میں خود بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ واقعتاً لوگ جو ہے نا اذیت محسوس کرتے ہیں جو سگریٹ، تو ان افراد کے لیے کہ جو سگریٹ پیتے ہیں، اور وہ لوگ کیونکہ عادی ہیں ان کو دھوئیں میں ویسے ہی مزہ آتا ہے. بلکہ ہمارے برادران اہل سنت کے ایک عالم مولانا اشرف علی تھانوی کہتے تھے، یعنی مزاح کے طور پہ کہتے تھے، سگریٹ نوشی والے اپنے آپ کو نہ لے جائیں اس میں، وہ کہتے تھے کہ کیا دوسرے کو دیکھ کے کہتے تھے جو سگریٹ نوشی کرتا تھا، کیا جہنمیوں جیسی شکل بنا رکھی ہے، یعنی اندر بھی دھواں، باہر بھی دھواں، ہر جگہ دھواں، جس طرح جہنم کے اندر ہوتا ہے. تو بہرحال تو ان کے لیے اذیت ناک ہوتا ہے جو افراد سگریٹ نوشی نہیں کرتے. اچھا، اگر کسی کو اب مسئلہ یہ کہ یقین ہو کہ مجھے اس سے نقصان ہوگا تو سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے. یقین ہے کہ اچھا نقصان کون سا والا، وہ بھی ابھی آ گیا ہے، یقین ہو کہ نقصان ہوگا تو یہ حرام ہے سگریٹ نوشی کرنا آقا سیستانی کے فتوے میں. ظن ہے اگر کہ نقصان ہوگا تب بھی حرام ہے، کیونکہ یہاں جو سینئر طالبات اگر بیٹھی ہیں تو ان کو ہم پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ دیکھیے وہم سے لے کر اور یقین تک جو ہے نا کچھ مرحلے ہیں. 0% جو خیال آپ کے دماغ میں ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں وہم. 1% سے لے کر 49% تک کا جو خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں احتمال. 50-50% شک. 51 سے لے کر 98 تک ہوتا ہے ظن. 99% اطمینان اور 100% یقین. یہ بہت زیادہ شکیات نماز کے مسئلوں میں پیش آتا ہے، نجاست و طہارت میں مسئلہ پیش آتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ میں نے اپنے الفاظ میں کر کے بتایا پرسنٹیج بنا کے، ورنہ فقہی اعتبار سے یا جیسے شک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تساوت طرفین، ایسا خیال جس کے دونوں پہلو بالکل برابر ہوں، اسے ہم نے 50-50% کہہ دیا. اور کوئی ایک پہلو کا زیادہ ہو جائے گا وہ 51 ہو گیا تو دوسرا 49 ہو گیا. تو 51% والا جو ہے ظن ہے، یہ چلتا ہے 51 سے لے کر 98 تک. اور 99% کوئی خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اطمینان، اور 100% تو یقین ہوتا ہے. یعنی 0% وہم، 1-49 احتمال، 50-50% شک، 51 سے 98 ظن، 99 اطمینان اور 100% یقین. تو آقا سیستانی کہتے ہیں یقین ہے کہ نقصان ہوگا تو حرام ہے. اور فرماتے ہیں اگر ظن بھی اگر کسی کو ہو رہا ہے، یعنی 51 سے لے کر اور زیادہ پہلو والا کہ نہیں مجھے اس سے نقصان ہو رہا ہے یا نقصان ہوگا، اور ایسا نقصان وہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا کہ اگر ظن بھی اگر ہو رہا ہے نا آپ کو، یعنی تو بھی آپ کے لیے پینا حرام ہوگا. اچھا، حرام قرار دینے کے لیے کس قدر نقصان ضروری ہے، کس قدر نقصان؟ تو احتمال ہو کہ ضرر ہوگا اور ضرر معتدن بھی ہوگا، یعنی بہت زیادہ ضرر ہوگا، بہت زیادہ ضرر، اور احتمال اقلائی ہو، اقلا کے نزدیک احتمال ہو کہ بھائی تو بہت زیادہ ضرر ہوگا. اچھا، اس میں لوگ بہت سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اقلا کہیں یا ڈاکٹرز کہیں. دیکھیں اس میں بھی شریعت نے بہت دقیق بات کہی ہے، یعنی اوکالا کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ کہنا چاہیے تھا بھائی ڈاکٹرز کہہ دیں. دیکھیے اگر ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے نا، پہلے ایک اور مسئلہ بتاؤں. عام طور پہ آپ لوگوں کی تو ابھی تک کلاس نہیں ہوئی، لیکن جو بہت سینئر کلاس کی کچھ خواتین یہاں موجود ہوں تو یہاں پر موسیقی اور گانے کے فقہ احکام کے موضوع پر کئی کلاسز ہوئی تھیں. تو اس میں عرف جسے گانا کہے ایک چیز یہ آئی تھی، لوگ معاشرہ، اچھا معاشرہ میں کون سا والا معاشرہ، دیندار لوگوں کا معاشرہ. تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں، دیندار لوگوں کے معاشرے سے نہیں پوچھنا، کیونکہ دیندار معاشرہ تو کوئی بھی دیندار شخص تو جو بھی اچھی آواز سے کوئی چیز پڑھ رہا ہوگا اسے کہہ دے گا یہ گانا ہے، اس سے نہیں پوچھنا. پوچھنا ہے عام افراد سے، کیا یہ آواز اس آواز کی مانند ہے جس طرح سے محفل لہو و لائب یا موسیقی کی محفلوں میں گلوکار وغیرہ نکالتے ہیں، اس سے ملتی جلتی آواز ہے کیا؟ یہ اگر آپ کسی اس سے پوچھیں گے دیندار آدمی سے तो दीनदार आदमी हमेशा उसके अंदर जो है ना एक्सट्रीम पे चला जाएगा फौरन, और जरा सी भी कोई अच्छी आवाज में कोई चीज पढ़ेगा ना, मसलन आपने देखा होगा वो जमीलुद्दीन अली जो है दोहे पढ़ा करते थे, और तरन्नुम से कोई शायर अगर कोई शायरी भी कर रहा हो तो हर दीनदार आदमी कहेगा भाई ये तो गाने के तर्ज पे पढ़ रहा है और जायज नहीं, हालांकि वो हुर आराम तक नहीं पहुंचती बहुत सी चीजें उसमें। तो शरीयत ने उसमें पाबंद शरीयत लोगों का उर्फ नहीं काउंट किया है बल्कि कहा आम लोगों से पूछी। इसी तरीके से सिगरेट के मामले में ये नहीं कहा कि अतिब्बा और डॉक्टर से जाके पूछी, अगरचे वो भी ओकला का एक पार्ट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि अगर डॉक्टर से पूछेंगे वो तो कहेगा कि एक क्या आधी सिगरेट पीना भी जो है नुकसानदेह, एक कश लेना भी नुकसानदेह है उसका, पूरी सिगरेट तो छोड़िए। तो इस वजह से डॉक्टर से नहीं पूछना, ये एक सिगरेट का एक कश लेने से हुरमत का हुक्म नहीं आएगा। ओकला ओकला कहें कि भाई इससे आपको बहुत ज्यादा, आप अगर इस तरह से पीते रहे तो इतने अरसा पीने से आपको बहुत ज्यादा जो है आपको नुकसान पहुंचेगा। तो ओकला के नजदीक, अच्छा ओकला में भी आम यानी ओकला की बहुत बड़ी तादाद, ये कहे ये नहीं कि कोई एक आदमी, कोई अफलातून और सुकरात बुकरात टाइप के बहुत सारे होते हैं तो वो कोई एक आदमी मेयार नहीं है, बल्कि ओकला का एक पूरा माशरा वो कहेगा भाई आप जितनी सिगरेट पी रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदेह। लेकिन कोई मसलन बिलफर्ज अगर एक सिगरेट पी रहा है और कई दिन बाद फिर दूसरी सिगरेट पी रहा है मसलन, तो ओकला नहीं कहेंगे कि इसके लिए मुस्तकबिल में कोई बहुत बड़ा खतरा है। तो आका सिस्तानी के फतवे में ये उस कदर हुरमत के लेवल तक नहीं पहुंचेगा। वो कहते हैं इतनी तादाद में पीना या इतने अरसे तक पीना कि ओकला चाहे मुस्तकबिल में क्यों ना सही, ओकला कहें कि आप इस तरह से अगर पीते रहे इतनी कम कम तादाद में भी तब भी मुस्तकबिल में आपके लिए नुकसानदेह, और नुकसानदेह आम नुकसानदेह नहीं है। जैसे कोई कह के जनाब मुझे सिगरेट पीने से तेजाबियत हो जाती है, तो तेजाबियत मैदे में होना ये इतना बड़ा जरर नहीं है कि जिससे आज हुरमत का फतवा दिया जा सके। कोई कह के मसलन मुझे सिगरेट नहीं पीऊं तो मुझे मसलन कब्ज हो जाता है, तो ये इतना बड़ा मसला शुमार नहीं किया जाता। यानी वाकईतन को कहा दिल के बीमार हो जाएंगे, दौरे दिल का दौरा पड़ेगा, डेथ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, फला चीज हो सकती है, इसमें फिर कहा जाएगा कि हाँ ये ओकला कह रहे हैं अब तो ये, और ये काबिल इतना जरर है। अच्छा अगर इत्मीनान हो कि इस कदर कम सिगरेट पिएंगे तो नुकसान नहीं होगा तो फिर आगा सिस्तानी के नजदीक हराम नहीं, यानी इतनी कम तादाद है। अब ये कोई तादाद कोई बता नहीं सकता है कि किसके लिए क्या हो सकता है, इंडिविजुअल एतबार से हो, हर शख्स के एतबार से अलग अलग हो सकती है। अभी आगे चलकर मैं एक दो मिसालें दूंगा जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। अगर सिगरेट से बहुत मामूली जरर हो, जैसे यही मैंने कहा मसलन कब्ज हो जाएगा या तेजाबियत हो जाएगी या मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा सही तरह से, यानी इतनी यानी बहुत मामूली सा कोई जरर है तो ये काबिल एतना शुमार नहीं होता, उस पर हुरमत का हुक्म नहीं लगेगा। बहरहाल हर शख्स के अपने एतबार से मुकल्लफ की खुद की जिम्मेदारी को देखे कि कितना, अगर ज्यादा ना पिए और मुहिम नुकसान ना हो, यानी बहुत ज्यादा ना पिए और बहुत ज्यादा नुकसान ना होने का इत्मीनान हो तो फिर ये हराम की हद तक आगा सिस्तानी के फतवे में नहीं पहुंचता है। लेकिन बहरहाल वो जो आपने इससे पहले जब भी मैंने आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी के सारे वो जो उन्होंने नुकसानात अपने फतवे के अंदर बयान किए हैं, जो उन्होंने तमाम डेटा जमा किया है मुख्तलिफ जगहों से, और उसके कितने और पहलू भी हैं मुआशी और जो है वो भी आपके सामने हैं, तो बहरहाल ये एक नुकसानदेह सौदा तो लगता है। लेकिन बहरहाल मुज्तहिद इसमें ज्यादा दखल नहीं देता, वो हर आदमी पे खुद ही छोड़ता है, जैसे कि आयतुल्लाह सिस्तानी। अगर सिगरेट का आदि और मुसलसल पीना नुकसानदेह हो उसके लिए, क्योंकि ये सिलसिला रुकता तो नहीं है, रोजाना एक तो नहीं पीता, फिर आदि शख्स जो है वो तीन पीता है, फिर चार पीता है, फिर पांच होने लगती है, फिर छह होने लगती है, इस तरह से बहुत से लोग तो सिर्फ एक सिगरेट सुबह में एक दफा सिर्फ सुलगाते हैं, फिर एक सिगरेट से दूसरे सिगरेट को करते जाते हैं इस तरह से। तो बहरहाल सिगरेट का आदि उसे पीना मुसलसल नुकसानदेह हो तो फिर हराम हो जाएगा। अच्छा अगर तर्क सिगरेट में जरर शदीद हो, यह भी उलमा ने एक एहतमाल के तौर पर लोगों ने सवाल पूछेंगे भाई हमें सिगरेट पीने से इतना नुकसान नहीं जितना सिगरेट छोड़ने से नुकसान हो रहा है, विदड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, अभी आगे चलकर हम ऐसे जिक्र करेंगे क्योंकि ये एक हफ्ते से ज्यादा बहुत हुआ तो विदड्रॉल सिम्टम्स जो एक महीने से ज्यादा नहीं होते, थोड़े दिन इंसान बस अपने आप को रोक के रख ले फिर ये विदड्रॉल सिम्टम जो होते हैं जब दूर होता है तो कुछ चीजों में, जैसे सिगरेट नोशी के आदि अफराद जो होते हैं रमजान आ जाते हैं एकदम से छोड़ते हैं तो चिड़चिड़ापन आ जाता है और बहुत परेशान होते हैं, और बस इधर अफ्तार किया उन्होंने और उधर फौरन सिगरेट सुलगाते हैं, तो वो निकोटीन वगैरह के जो विदड्रॉल होता है उसकी वजह से वो सिम्टम होते हैं। लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रहते, मुश्किल से एक हफ्ता रहते हैं, किसी को बहुत ज्यादा भी हुए तो एक महीने से ज्यादा नहीं है, और आस्ते आस्ते फेड होते जाते हैं। तो अगर तरके सिगरेट में जरारे शदीद हो तो जाहिर है फिर जरारे शदीद वाले पहलू को लेना पड़ेगा, और इतनी मकदार में फिर पी सकते हैं कि वो जरारे शदीद ना हो। लेकिन ये एहतमालात हैं, आमतौर पर होता नहीं है, जैसे मैंने कहा कि नुकसान इतना नहीं। और अगर तर्क का जरा और मसावी या ज्यादा हो, ये भी एक एहतमाली सिर्फ बात है, यानी अगर छोड़ रहे हैं हम सिगरेट तो उसका नुकसान जो है या तो मसावी है या ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस सूरत में भी फिर वाजिब नहीं है सिगरेट का छोड़ना। यानी मुज्तहिदीन से मुख्तलिफ सवाल पूछे जाते हैं, जो सवाल पूछते हैं उसी के मुताबिक जवाब देते हैं, ये नहीं कि वो इसको आप प्रोमोट कर रहे हैं इस चीज को, ये मुराद नहीं होती। अच्छा, अलबत्ता नशावर चीजें जो और हैं उनमें अगर जरर बलीग ना भी हो, ये हम अगली नशिस्त में बयान करेंगे। मसलन कोई कहे भाई मुझे शराब से तो कोई एक पैग में शराब का पी रहा हूं मुझे तो कोई जरर नहीं, नहीं उसका तो एक कतरा भी आप नहीं पी सकते। कोई कहे कि भाई चरस मैं पी रहा हूं लेकिन इससे मुझे जरर बलीग तो नहीं हो रहा, एक आध चरस का अगर मैं कश लगा लूं, नहीं, वो एहतियात वाजिब की बिना पर जो ये नशावर चीजें हैं, ये नशा यानी अगर किसी के वक्ती तौर पर असर नहीं भी अगर कर रहा है तब भी उनके लिए एहतियात वाजिब के तौर पर पीनी जायज नहीं, यानी ये चरस भंग अफीम वगैरह। लेकिन ये अगली नशिस्त में बात आएगी। यही आयतुल्ला खामेना इसे भी पूछा गया, वो भी कहते हैं कि मीजान जो है असल में नुकसान है, हुक्मे ताबे मीजान जरर आस्त, यानी इसका जो मेन जो सिगरेट को हराम करार देने का जो मीजान है वो ये है कि नुकसान होगा, और नुकसान काबिले मुलाहिजा होगा, और दूसरों के लिए, खुद अपने लिए और दूसरों के लिए अगर अजियत का बाइस है तो फिर जायज नहीं। ये उन्होंने अपने फतवे में कहा, यानी वही कमोबेश आका सिस्तानी वाला फतवा रहबर मुअज्जम का भी। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम हुक्का पिए तो हुक्का जो है वो निस्बतन बेहतर है शायद सिगरेट से, जबकि ये बात सही नहीं है, बल्कि हुक्का या शीशा जो आजकल कहा जाता है ये सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह चीज है। आमतौर पर लोग कहते हैं भाई कुछ नहीं है उसमें, तो शायद वो पानी से फिल्टर होके वो आ रहा होता है वो, और उसमें पानी डाला जाता है हुक्के के अंदर, लोग अपनी एक चीज बना लेते हैं। कई गुना ज्यादा खतरनाक है हुक्का सिगरेट पीने के मुकाबले में। अच्छा, अब जो शीशा या हुक्का जिसे आजकल शीशा जो तौर पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी यहां पर खुले थे, फिर उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, तो तकरीबन मसलन अगर कोई शख्स 1 घंटा सिगरेट नोशी करता है और उसके मुकाबले में 1 घंटा शीशा पीता है वो, तो समझें कि 200 टाइम्स ज्यादा स्मोक उसके फेफड़े के अंदर चला जाता है शीशा पीने में। और बहुत से तो ऐसे भी हैं कि एक कशी जो एक गहरा लेते हैं उसमें पता नहीं 50 या 60 सिगरेट्स के बराबर धुआं अंदर से एक एक साथ जाता है। तो बहुत सारे नौजवान बड़े उसके अंदर, बहुत से अब तो खैर जरा कुछ सख्ती हो गई है, वरना रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर ये रखा जाना शुरू हो गया था, हत्ता कि बच्चे भी जाकर इसको पीने लगे थे। एक बच्ची जो 12 साल की थी गालिबन, वो मेरे पास एक केस आया था और उसको लंग कैंसर हुआ था, तो मालूम ये चला कि अपने वालदेन के साथ जाती थी, वो कश लेते थे, एक आध कशे भी ले लेती थी। कुछ दिन ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा, बाद में पता चला कि इसको जो है वो उसकी ब्रोंकोस्कोपी हुई और तो पता चला कि कैंसर लंग का उसको इस वजह से हो गया। तो ये नौजवान वगैरह, क्योंकि इसमें सिगरेट नोशी की निस्बत इतना ज्यादा स्मोक अंदर जा रहा है, यानी 200 टाइम ज्यादा जा रहा है, यानी जितनी देर में अगर 1 घंटा सिगरेट पीते हैं उसके मुकाबले 1 घंटा कोई बैठ के अगर ये पिए तो 200 गुना ज्यादा, या 200 सिगरेट के बराबर जो है वो ज्यादा जो है वो चला जाता है। यानी सोचें आपके कितना ज्यादा इसके अंदर, तो वो लोग जो कहते हैं कि तो उसकी समझेंगे लंग जो है वो बस ये इस अंदाज के हो जाएंगे अगर वो इस तरह से इसको पीता रहेगा। तो नौजवानों के अंदर ये चीज बहुत कॉमन होती जा रही है और ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है उस लिहाज से। तो बहरहाल अभी आ रही हैं सब चीजें, आ रही हैं अभी अभी, मैंने कहा ना अभी आज सिर्फ सिगरेट के मुताबिक हम बात करेंगे, इसके अलावा जितनी और भी चीजें हैं वो जितनी भी नशावर चीजें मसलन पान के मुताबिक, और अच्छा इसमें जो सिगरेट है इसमें वो सब चीजें आ जाएंगी, बीड़ी टाइप की चीज भी आ जाएगी वो भी समझे सिगरेट के हुक्म के अंदर है, और जो और भी इस तरह से जो दुखानियत, जब भी हम इसके अंदर ये शीशा और हुक्का टाइप की चीज भी इसी के अंदर ले आए। तो रहबर मौजम से भी बहुत सारे सवालात इस सिलसिले में जो है वो किए गए हैं, तो उसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि असल चीज जो है इसके अंदर जो है नुकसान का पाया जाना है, और ये हर शख्स मुकल्लफ खुद तय करेगा कि मुझे किस कदर नुकसान है। तो आपने देखा कि सिर्फ शीशा पीने से समझे 100, ये इतनी सिगरेट ये सिर्फ एक घंटे के शीशे पीने के अंदर 100-200 बल्कि 200 के करीब सिगरेट जो है वो एक वक्त में इंसान ने कंज्यूम कर लिया, जो वहां बैठ के नौजवान इस अंदाज से सिगरेट पी रहे होते हैं। यानी ये सोचें कि एक ही वक्त में वो इतनी सारी सिगरेट जो है वो जला के अपने अंदर लेके जा रहा है। ये इस पर कॉन्सेप्ट के लिहाज से मैंने बताया कि लोग कहते हैं इसमें तो चलें कोई बात नहीं है, हुक्का पिया जा सकता है, ये उतना नुकसानदेह नहीं, ये भी उतने हैं बल्कि बहुत उससे भी कहीं ज्यादा नुकसानदेह। खवातीन भी इसके अंदर आ गई हैं और वो भी बैठ के वहां पर एक फैशन के तौर पर एक होने लगा है कि भाई चलें हम भी कुछ कश लगा लें इस तरह से। बुजुर्ग हजरात बैठे जो हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे पहले, तो वो भी इसी अंदाज से नुकसानदेह चीज है। और देहाती खवातीन के अंदर भी हुक्का पीना आज भी बहुत आम है और बुजुर्ग हजरात भी पीते हैं इस अंदाज से। दुकानें जो खुल गई हैं बहरहाल, लेकिन अब ये कि इसके ऊपर क्रैक डाउन हुआ है, बहुत सारी जगहों पे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन बस वो कॉस्मेटिक पाबंदियां, हर चीज अपनी राह खुद निकाल लेती है, उन्होंने और मुतबादिल राहें ढूंढ ली हैं। तो बस समझे ये कि जो शीशा या हुक्का है वो इस तरह देख लीजिए कि वो एक समझे एक फायर हो रहा है अंदर और वो हलाकत खेज उसका बाइस बनेगा ये। अच्छा, अब एक बड़ा मारकातुल आरा मसला खासतौर पर उन अफराद के लिए होता है कि जो कि हालत रोजा में सिगरेट पीने चाहते हैं। तो हालत रोजा में सिगरेट पीने का हुक्म यह है कि आगा सिस्तानी से भी ये सवाल पूछा गया तो फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर हालत रोजा में अगर कोई शख्स सिगरेट पिए तो उसका रोजा बातिल हो जाता है। हालत रोजा में सिगरेट पीने से रोजा बातिल है, और यही रहबर मौजम का भी है बल्कि तमाम मराजे का, मौजूदा जो मराजे हैं उन सब का नजर यही है कि एहतियात वाजिब की बिना पर उसका रोजा बातिल हो जाएगा। अच्छा, अब अच्छा लोग ये पूछते हैं कि बातिल तो हो जाएगा, क्या फिर उसकी कजा करनी पड़ेगी, कफारे देने पड़ेंगे? तो आयतुल्ला खोई और आयतुल्ला सिस्तानी के फतवे में एहतियात वाजिब की बिना पर रोजा बातिल है और उसकी कजा अंजाम देनी होगी, उसकी कजा एहतियात वाजिब की बिना पर अंजाम देनी होगी। और अलबत्ता फरमाते हैं कफारा कोई नहीं, तो कफारा कोई नहीं है कि मायने ये नहीं, यानी आपने हालत रोजा जो रमजान का जो वाजिब रोजा है उसके अंदर सिगरेट पी तो रोजा तोड़ने का जो कफारा है, रोजा तोड़ने का जो गुना है वो खुद ही इस कदर ज्यादा है कि इमाम फरमाते हैं कि रूह ईमान ही उसके अंदर से निकल जाती जो रमजान का एक रोजा भी ना रखे, जो इस अंदाज से कोई अपना अगर रोजा बातिल कर ले। तो सारे मराजे कहते हैं एहतियात वाजिब की बिना पर उसका रोजा बातिल है और कजा उसकी अंजाम देनी होगी बाद रमजान, अलबत्ता कफारा कोई नहीं। अलबत्ता आयतुल्ला इसहाक फैयाज फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की कफारा भी देना होगा, लेकिन बहरहाल आगा सिस्तानी के फतवे में और आयतुल्ला खोई वगैरह भी यही कहते थे कि नहीं कफारा नहीं देना, अलबत्ता सिर्फ कजा करनी। अच्छा, एक बड़ा सवाल होता है, लोग आमतौर पर पूछते हैं कि कोई शख्स मसलन आपको पता है कि कोई शख्स दूसरे शहर गया और अपने शहर वापस आ रहा हो, तो अगर जोहर से पहले अगर अपने शहर आ जाता है और दौरान सफर उसने रोजा तोड़ने वाला कोई काम नहीं किया हो तो, और जोहर से पहले अपने वतन पहुंच जाए वो, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि फिर उस रोजे उस रमजान का वो रोजा रखे। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं हमने और तो कोई खाया पिया नहीं, सिर्फ हमने एक सिगरेट पी थी दौरान सफर में, तो अगर सिस्तानी फरमाते हैं एहतियात वाजिब की बिना पर उस दिन का रोजा वो रिजाए मतलूबियत की कसद से रखेगा और बाद में उसकी कजा भी करेगा। यानी वही वाली बात हो गई कि सिगरेट अगर आपने पी ली तो रोजे की कजा करनी करनी है और एहतियात वाजिब की बिना पर रिजाए मतलूबियत की नीयत से उस रोजे को कंटिन्यू भी करे। तो बहरहाल ये एक सिगरेट रोजे में इसका एक मसला ही आता है। लोग कहते हैं आपने कहा कि एहतियात वाजिब है, एहतियात वाजिब में तो दीगर मुज्तहिदीन की तरह रुजू भी हो सकता है जो कि उसकी इजाजत देते हो, तो कोई ऐसे मुज्तहिद आजकल हैं? तो जी कोई मुज्तहिद आज के दौर में ऐसा नहीं है जिसमें एहतियात वाजिब में रुजू किया जा सके और हालात रोजा में सिगरेट पीने की इजाजत मिल सके, मौजूदा जिंदा मुज्तहिदीन में कोई नहीं है। वैसे मैं एक उस मिसाल के तौर पर बयान कर रहा हूं, उस पर अमल नहीं किया जा सकता कि आयतुल्ला सादिक सदर जो थे उनका अलबत्ता एक फतवा गुजर चुका है कि अगर बहुत एहतियाज हो किसी को और उसके बगैर आमतौर पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत से लोग जो आदी तौर पर आदी होते हैं सिगरेट के, तो उनके फतवे में जरूरत के मौके पर इसकी इजाजत थी। लेकिन उनकी तरफ तो ना अब रुजू हो सकता है ना उस लिहाज से उस कैटेगरी के अंदर इनको मुर्दा की तरफ तो रुजू भी नहीं हो सकता है। तो बहरहाल रुजू की इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है और जो भी कोई शख्स हालत रोजा में सिगरेट पिएगा तो उसका रोजा भी बातिल हो जाएगा एहतियात वाजिब की बिना पर और उसको उस बाद रमजान उसकी कजा भी करना पड़ेगी। लेकिन उलमा एक चीज और भी कहते हैं कि सबसे बेहतरीन टाइम है रमजान का जिसमें आप अपनी सिगरेट की आदत से पीछा छुड़ा सकते हैं। इसमें तो वाजिब ही हो गया है ना, अब बहुत अच्छा मौका है आपके पास पूरे 30 दिन का कि विद्रॉल सिम्टम भी हुए तो होके इसी दौरान होके खत्म हो जाएंगे, अपने आपको आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह से पीछा अपना छुड़ा लें इससे। तो ये भी गालिबन आयतुल्ला दस्तगैब शिराजी फरमाते थे कि लोग उनसे पूछते थे कि गुनाह छोड़ने का कोई तरीका बताएं, फिर पूछते थे कि तुम सिगरेट वगैरह भी पीते हो, कहा कि हाँ लेकिन आगा ये तो हम नहीं छोड़ सकते, कहा कि जब तुम सिगरेट जो कि लिहाज से चले हम कहेंगे फिलहाल हराम की हद तक भी ना पहुंचे, जब तुम वो नहीं छोड़ सकते तो एक जो सरी हराम है वो कैसे छोड़ोगे। तो वो कहते थे कि इन चीजों को भी आहिस्ता आहिस्ता ये भी चीजें इस बात का सबब बनती कि आप में इस्तकामत जो है वो पैदा नहीं हो पाती कि आप इतने ऐसे ऐसे नशों के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं, इनको जब नहीं छोड़ सकते तो बड़े चीजों को तुम कैसे छोड़ोगे। तो बहरहाल रमजान जो है वो एक आइडियल टाइम है कि स्मोकिंग से अपने आप को पीछा छुड़ाने का। हालत रोजा में ई सिगरेट्स क्या पी सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, ये एक बड़ा लोग कहते हैं कि भाई ये तो उस तरह का तंबाकू जिस तरह धुआं उसमें निकल रहा होता है ऐसा तो नहीं है। तो बहरहाल जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स भी जो अब आ गई हैं और तो उसमें निकोटीन के एतबार से जो मसला होता है, तो आयतुल्ला सिस्तानी फरमाते एहतियात वाजिब के तौर पर रोजे की हालत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल भी जायज नहीं। तो ये वाला मसला इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का भी यहां पर ऐसा ही हो जाता है, इसमें भी मुख्तलिफ फ्लेवर्स भी ऐड किए जाते हैं बाज़ औक़ात और एक लिक्विड होता है इसके अंदर और लिक्विड के जरिए वो निकोटीन जो है जिस्म के अंदर जा रही होती है। लोग कहते हैं बहरहाल इसके तिब्बा डॉक्टर से पूछना चाहिए, बहरहाल ये जो आम सिगरेट है उसकी निस्बत ये शायद जरा कम नुकसानदेह हो। तो अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहे और मुतबादिल तरफ जो है वो अभी फिलहाल ले जाना चाहे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे निकल जाऊं तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की तरफ भी जाकर फिर छोड़ सकता है इसको, लेकिन हालत रोजा में बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल भी जायज नहीं। फिर एक फिकही हुक्म आता है सिगरेट के सिलसिले में, मस्जिद और इमाम बारगाह में सिगरेट नोशी वगैरह का क्या हुक्म है। आयतुल्ला सिस्तानी फरमाते हैं, अच्छा देखिए मैंने अब इससे पहले कहा कि अरब माशरे माशरों के एतबार से फर्क है, बहुत से अरब माशरे ऐसे हैं जहां इमाम बारगाहों के अंदर हुक्के वगैरह रखे हुए हैं और बाज़ औक़ात देख के इतनी हैरानगी होती है कि कुछ जगहों के ऊपर, अगरचे हर जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पे तो यानी मजलिस हो रही है या कोई और इस तरह से हो रहा है और वो साइडों में बैठ के हुक्के वगैरह पी रहे होते हैं और मजलिस भी चल रही होती है सारी। तो बहरहाल यहां तो बहुत मायूब है, यहां तो मायूब होने की वजह से और तौहीन इमाम बारगाह वगैरह समझी जाए तो हराम भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल बहुत से माशरे ऐसे हैं। लेकिन इस सिलसिले में जिन माशरों के अंदर ऐसा समझा भी जाता है वहां पर भी आयतुल्ला सिस्तानी फरमाते हैं काम मकरूह है, मसाजिद और इमाम बारगाहों मकरूह है और अगर जाहिर है कि तौहीन मस्जिद और इमाम बारगाह शुमार हो रहा हो तो हराम भी हो जाएगा। लेकिन अमूमी हालात में यानी जहां पर इस तरह से होता भी तो कहते हैं कि बहरहाल मस्जिद और इमाम बारगाह में तौहीन वगैरह अगर नहीं हो रही तो ये काम मकरूह है और एहतियात इसी में है कि ये सिगरेट नोशी या हुक्का वगैरह ये मसाजिद और इमाम बारगाहों में ना पिए जाए। और अगर पाकिस्तानी माशरा है तो यानी यहां तो तौहीन मस्जिद वगैरह शुमार हो जाएगा। अच्छा फिर एक मसला एक और भी आता है एहतिकाफ के सिलसिले में, एहतिकाफ में आपको पता है कि 3 दिन तक मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते, तो अच्छा जब रोजे का वक्त खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो उससे लेकर अगले दिन के रोजे तक का जो टाइम होता है तो उसमें जो सिगरेट पीने वाले अफराद हैं मस्जिद ही के अंदर, मस्जिद से बाहर जा नहीं सकते, मस्जिद में सिगरेट पी नहीं सकते, अब वो क्या करें, कुछ थोड़ी देर के लिए तो बाहर निकलने का कोई उनके पास मसला होना चाहिए ना। तो एतिकाफ के सिलसिले में जो मोतकफीन हैं, आयतुल्ला सिस्तानी फरमाते हैं एतिकाफ में भी इफ्तार के बाद सिगरेट पीने के लिए हुदूद मस्जिद से बाहर जाने की इजाजत नहीं। अच्छा, हुदूद मस्जिद से मुराद वो वाला एरिया नहीं कि मस्जिद होती है फिर जहां चप्पल उप्पल उतार के लोग फिर नीचे उतरते हैं, फिर बाहर का एरिया भी पूरा मस्जिद है जो बहुत बड़ी जो चार दीवारी के अंदर होता है, तो लोग कहते हैं ये भी तो मस्जिद है यहां चले जाते हैं हम। नहीं, मस्जिद से मुराद वो जगह है कि जहां पर, यानी आपको समझाने के लिहाज से कह रहा हूं, वैसे ही तो ये है कि मस्जिद वो एरिया कहलाता है जो कि वक्फ करने वाले ने मस्जिद के तौर पर वक्फ किया हो। यानी आम तौर पर वो वाला एरिया तो होता ही जहां लोग चप्पल उप्पल उतार देते हैं, उसके बाद चप्पल लेके अंदर नहीं जाते हैं, बस वहीं मोतकफीन या एहतिकाफ करने वालों को रहना होता है, उससे बाहर भी नहीं जा सकते, एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते तीन दिनों तक। अब ये मस्जिद में भी नहीं पी सके, बाहर भी ना जाए, तो आगा सिस्तानी फरमाते जी हाँ, वरना एहतिकाफ बातिल हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। और दो दिन अगर एहतिकाफ मुकम्मल कर चुके हो तो तीसरा दिन वाजिब भी हो जाता है, और फिर उसके बाद बाहर गए तो उसकी कजा भी अंजाम देनी पड़ेगी। तो आयतुल्ला सिस्तानी का बहरहाल ये, लेकिन बहरहाल रहबर मौजम इस सिलसिले में फरमाते हैं अगर बहुत ज्यादा शदीद जरूरत महसूस हो तो फकत सिगरेट पीने की मामूली मकदार की हद तक मस्जिद से बाहर जाने की इजाजत है, लेकिन आगा सिस्तानी बहरहाल इसकी इजाजत नहीं देते। अच्छा, फिर एक और चीज भी है, सिगरेट छोड़ने के लिए नजर कसम और अहद करना। मसलन मैं नजर करता हूं अल्लाह का नाम लेकर, मैं कसम खाता हूं या मैं अहद करता हूं कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो इसकी पासदारी करना वाजिब हो जाती, क्योंकि अकली एतबार से सिगरेट नोशी को तर्क करना एक अच्छी चीज है, रुझान अकली इसके अंदर पाया जाता है। हर वो चीज जिसमें रुझान अकली पाया जाए या शरई रुझान पाया जाए तो उसके लिए नजर कसम और अहद किया जा सकता है। तो सिगरेट छोड़े अगर कोई शख्स ये नजर करके कि मुझ पर पाबंदी आ जाए तो इसकी पासदारी करना उसके लिए वाजिब हो जाएगा। अच्छा, क्या सिगरेट पीने से वजू टूट जाता है? तो इसका जवाब है कि सिगरेट पीने से, देखिए बहुत सी चीजें माशरे के अंदर ऐसी हैं कि जो लोग समझते हैं कि इससे वजू टूट जाता है, जैसे यही सिगरेट पीने से क्या वजू टूट जाता है, जवाब है कि नहीं, वजू नहीं टूटता। जैसे खवातीन के मुतालिक मशहूर है कि वो समझती हैं कि नामहरम को देखने से वजू टूट जाता है, ये तो खैर हरगिज भी नहीं टूटता नामहरम को देखने से, लेकिन नामहरम के सामने भी अगर कोई औरत वजू करे तो ये गुनाह तो है। यानी जाहिर है वो अपने हाथों को खोलेगी, हाथों कलाई तक धोने के लिए या अपने सर का मसा करने के लिए सर उसको जाहिर करना पड़ेगा, तो ये अमल अगरचे हराम है लेकिन इससे वजू बातिल नहीं होता है। ये बहुत सारी जगहों पे आमतौर पर जैसे सफर ज़ियारत वगैरह है तो ख़वातीन कहीं पे भी बस रुक गई और वहां जल्दी जल्दी वजू करना है और कोई अलग मर्दों से सेपरेट इंतजाम नहीं है, तो ख़वातीन वहीं मर्दों के साथ ही कहीं पे भी वजू करना शुरू हो जाती है। ये अमल हराम है क्योंकि उसे अपने पर्दे की पासदारी हर वक्त करनी, तो फिर वो ये करें बड़ी सी चादर लेके उसके अंदर नीचे बैठ जाए और उसके अंदर ही तीन चुल्लू में वजू हो जाता है, वह अंदर ही बैठे बैठे सब का। हत्ता कि वो खवातीन, जब मैं एक दफा पहले भी बयान कर चुका हूं कि जो मसलन वजू टूट जाता है अगर किसी का और वो तवाफ वगैरह कर रही है, अब कहां वो निकल के बाहर जाए, तो वो उसी दौरान भी उसका एक तरीका है कि स्प्रे बॉटल वगैरह अपने साथ पर्स में रखे और या किसी भी जगह जो है बैठ जाए और वहीं बैठे बैठे जल्द से जल्द चंद सेकंड में वो उसका वजू हो सकता है, एक मिनट के अंदर अंदर अंदर, तो वो इस तरह से वजू कर ले अगर कहीं जाना मुमकिन नहीं। यानी ये नहीं कि सारे अपने स्कार्फ और सब चीजें उतार के कहीं टांगने की जगह हो वहां टांगेंगी, फिर आप कहीं किसी जगह बैठेंगी और पूरे एहतमाम, हर जगह मुमकिन नहीं होता और सफर में तो और ही मुश्किल होती। तो बहरहाल बिलफर्ज अव्वल तो ऐसा खवातीन नहीं कर सकती कि नामहरमों के सामने अपना हिजाब उतार के वजू करें, लेकिन बिलफर्ज अगर कोई ऐसा कर चुका हो ये तो गुनाहगार तो वो होगी लेकिन उसका वजू बातिल नहीं होता। तो इसी तरीके से सिगरेट पीने से भी वजू बातिल नहीं होता, नामहरम को देखने से भी वजू बातिल नहीं होता, बल्कि नामहरम के सामने वजू करने से भी वजू बातिल नहीं होता, अगरचे गुनाहगार होती है। उसे किसी ऐसी जगह या औरतें अपनी हल्का बना लें, एक चादर के पीछे उसे कर लें और एक एक करके औरत जाके वजू कर ले इस अंदाज से कि नामहरमों की निगाह उस पर ना पड़े, या चादर के अंदर ही वो बैठ जाए और किसी को नजर नहीं आएगा और वहीं बैठ के वजू करे और हाथ पांव का मसा करके और स्लीव्स और वो सब मोजे वोजे पहन के और दोबारा अपनी चादर को पहन ले, तो ये भी एक तरीकेकार हो सकता है। आजकल ये भी चीज हो गई, बहुत से हमारे एक सियासतदान है वो बाकायदा शराब में भीगे हुए सिगरेट भी इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं कितनी शराबों बहुत ये शायद 100-100 डॉलर का एक सिगार मिलता है वो, तो बहरहाल शराब नोशी के हुक्म में तो ये नहीं आएगा, अलबत्ता फिर भी कहा जाता है कि एहतियात इसी में है कि इससे परहेज किया जाए। सिगरेट की खरीदो फरोख्त और उसका कारोबार करना कैसा है? अच्छा, सिगरेट की खरीदो फरोख्त और कारोबार आयतुल्ला सिस्तानी के फतवे में जायज है, और ये हर शख्स का अपना मुकल्लफ है। वो उन्होंने कहा कि खुद चेक करे जो पीने वाला है कि उसे कितनी सिगरेट उसके लिए नुकसान दे, तो उस एतबार से, लेकिन कारोबार करना इसका जायज है। और फी नफ्स ही रहबर मौजम के नजदीक भी सिगरेट नोशी का कारोबार वैसे जायज है, लेकिन वो ये फरमाते हैं कि मुकर्ररात और कवानीन के ताबे भी, यानी अगर गवर्नमेंट ने सिलसिले में कोई पाबंदी लगाई हुई है तो कानून की पासदारी वो करनी वाजिब है, और इस हद तक तो आगा सिस्तानी भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर हुकूमतों में ये सिलसिला इतना नहीं है और इसमें रिलैक्सेशन है काफी, किसी भी जगह इसको ममनू करार नहीं दिया गया है, तो इस लिहाज से सिगरेट की खरीदो फरोख्त और कारोबार में हरज नहीं। एक और एक मसला, एक इतनी ऐसी चीज है कि क्या कोई औरत निकाह की शरायत में तरके सिगरेट नोशी की शर्त रख सकती है? मसलन में कोई रिश्ता आया हुआ है और वो सिगरेट पीता है, तो क्या कोई औरत ये शर्त रख सकती है, मैं इस शर्त पे से निकाह करूंगी? निकाहनामे में बाकायदा देखिए बहुत सारी चीजें शर्तें रखी जा सकती है। हमने भी आगा सिस्तानी के जो नुमाइंदे हैं खास इस्तफ्तात सेक्शन के, उनसे जब ये सवाल पूछा कि इस सिलसिले में आयतुल्ला सिस्तानी की नजर क्या है, उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये शर्त रखी जा सकती है और वाजिब है उस शर्त की पाबंदी करना उस शख्स के लिए कि जिसने इस शर्त को कबूल करते हुए निकाह किया इस औरत के साथ। तो देखिए बहुत सारी निकाह की शरायत ऐसी हैं कि जो कि शर्त के तौर पर रखी जा सकती हैं, जैसे यही, या मसलन खवातीन बास, तो ये ज़िमनन बीच में आ रही है चीज कि खवातीन हक हक तलाक की वकालत की शर्त रख सकती हैं। आजकल जिस एतबार से केसेस आ रहे हैं, अगर जहां तक भी चीज मुमकिन हो, ये खवातीन को अपने निकाह के अंदर उस लिहाज से शर्त के तौर पर रख लेनी चाहिए, या तो मुतलक तौर पर ये इस बात का हक तलाक वकील बनकर उसकी तरफ से मुतलक तौर पर भी ले सकती है और मशरूत तौर पर भी ली जा सकती है। क्योंकि बहुत सी खवातीन छोटी छोटी बातों पे कहीं तलाक ना लेना शुरू हो जाएं, तो मसलन तशखीस दी जा सकती है, तीन उलमा मसलन तशखीस दे दें कि इस सूरत में इसके तलाक इतने जुल्म कर रहा है कि अब तलाक हो जानी चाहिए, तो फिर तलाक का सीगा पढ़ दिया जाएगा चाहे शोहर तैयार ना भी हो। तो ये बहुत सारी चीजें आप अपने लिए खुद ही शरीयत ने सहूलियत दी है। लोग बहुत से लोग कहते हैं कि भाई औरत के हाथ में तलाक का इख्तियार कोई नहीं है, तो मर्द बिल्कुल औरत को मजबूर कर देने के बराबर है। तो इस्लाम ने पहले से आपको इख्तियार दिया, बस आपके पास मालूमात नहीं थी, कानून की आपने इस्तेमाल नहीं किया, वरना निकाह के वक्त ये शर्त रखी जा सकती थी। अच्छा, क्या ये शर्त रखी जा सकती कि ये दूसरी शादी नहीं करेगा? तो आयतुल्ला सिस्तानी बल्कि रहबर मौजम और इमाम खुमैनी के अलावा सब कहते हैं कि ये वाली शर्त भी रखी जा सकती है, और मर्द के लिए वाजिब हो जाएगा कि इस शर्त की पाबंदी करे। लेकिन अगर बहरहाल उसने मुखालिफत कर दी और दूसरी शादी कर ली, तो इन लोगों के निकाह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना वो दूसरा निकाह बातिल होगा, अलबत्ता शख्स गुनाहगार हो जाएगा। लोग कहते हैं गुनाहगार हो जाएगा, ये तो कोई खास बात नहीं, यही सबसे बड़ी और खास बात है। अल्लाह की नाफरमानी, एक अहद जो उसने किया था उसकी पासदारी नहीं की, क्या उसको अजाब भुगतना पड़ेगा इसका? बहरहाल वो कहते हैं कि ये वाली शर्त औरत रख सकती है और उसकी पाबंदी भी करनी जरूरी, लेकिन रहबर मौजम कहते हैं ये वाली शर्त, और इमाम खुमैनी भी कहते थे कि ये वाली शर्त बातिल है, क्योंकि दूसरी शादी उसका एक वैसे इख्तियार है, तो इसे इख्तियार से और हक से उसे महरूम नहीं किया जा सकता, तो ये वाली शर्त ही बातिल है। लेकिन आगा सिस्तानी और दीगर और जो सब महाराजे की एक बड़ी तवील फहरिस्त है, वो सब ये कहते हैं कि नहीं, ये वाली शर्त रखी जा सकती है और उसकी पाबंदी भी मर्द के लिए करनी वाजिब। तो ये औरत निकाह में सिगरेट नोशी ये शख्स तर्क करेगा और आइंदा सिगरेट नहीं पिएगा, मुझे पसंद नहीं है, तो ये अगर कबूल कर लेता है तो शख्स पर वाजिब हो जाएगा कि सारी जिंदगी उसकी पासदारी करे और सिगरेट नोशी ना करे। ये भी उससे रिलेटेड एक चीज आती है। अच्छा, क्या नो स्मोकिंग एरियाज के मुकर्रात की पाबंदी लाजमी होती है? मसलन बहुत से आप देखते हैं कि इदारों में जाती हैं, बैंक्स में आप जाती हैं, वहां नो स्मोकिंग एरिया या उसको करार दिया होता है, जहाजों के अंदर नो स्मोकिंग होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो स्मोक करना, तो हर जगह लिखा हुआ भी होता है इसको। तो जी हाँ, इसकी पाबंदी उस लिहाज से लाजिम है। और अमूमी मुकामात पर सिगरेट पीने का वही वाला हुक्म अभी आ जाएगा कि यानी जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं कि ये खुद भी बहुत उस लिहाज से नुकसानदेह होती है कि हर जगह इतना धुआं और दीगर लोग भी इससे मुतासिर होते हैं और उनको बहुत अजियत भी इस सिलसिले में हो रही होती, और कुरान की आयत भी है, मोमिनीन और मोमिनात को जो लोग अजियत पहुंचाते हैं तो इस्मा मुबीना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और पैगंबर इस्लाम की वो हदीस भी यहां पर आती है, ला ज़रारा वाला ज़रारा फिल इस्लाम, इस्लाम में ना तो नुकसान देने का हुक्म है ना नुकसान उठाने का हुक्म है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमें फिलहाल नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन दूसरों को नुकसान हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, उनको अजियत हो रही है, उनको नुकसान हो रहा है, उनको तो बहुत बड़ा उस लिहाज से गुनाह बन सकता है। अच्छा, अब ये कि जनाब सिगरेट नोशी कैसे छोड़ें, तो एक तो उस्ताद शहीद सिप्ते जाफर महरूम कहते थे कि सिगरेट नोशी छोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, हमारे वालिद 25-30 मरतबा सिगरेट छोड़ चुके थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो बहरहाल सिगरेट नोशी बहुत से लोग, तो एक टीचर थी उन्होंने तजर्बा करके दिखाया सिगरेट नोशी के नुकसान बताने के लिए कि ये देखिए ये सिगरेट का धुआं है, इसमें हमने ये वाला कीड़ा रखा, थोड़ी देर में देखा कीड़ा मर गया। तो कहा इस बच्चों इससे आपको क्या सबक मिला? बच्चों ने कहा इससे सबक ये मिला कि अगर कोई शख्स सिगरेट नोशी करे तो उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। तो इससे पॉजिटिव पहलू कोई ना देने लगे कि भाई सिगरेट नोशी जो है वो, तो सिगरेट नोशी कैसे छोड़ें, तो एक सबसे पहली बात तो वाकया था इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, फरमाते हैं मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो बीमारियों के खौफ से खानों से तो परहेज करता है मगर खुदा की सजाओं के खौफ से गुनाहों से परहेज नहीं करता है। यानी अभी कितनी आपने देखा कि जनाब ये नुकसान हो जाएगा और वो नुकसान हो जाएगा और ये दिल की बीमारियां और वो, और इसकी वजह से आप सिगरेट नोशी को तर्क कर रहे हैं। तो यानी वो गुनाह को और बता आप नहीं छोड़ रहे कि जिसके कितने अजाब बताए गए हैं कुरान और हदीस के अंदर के तुम्हें ये और वहां के तो अजाब अलीम और शदीद तरीन अजाब जो है वहां पर दिए जाएंगे उन गुनाहों के, उससे इंसान नहीं छोड़ रहा है उसको। तो बहरहाल ये कि ये इसको भी सोचना चाहिए इसके साथ। तो जैसे इससे पहले हमने जिक्र किया था कि विदड्रॉल सिम्टम्स कुछ होते हैं, जहर है निकोटीन तो जनाब उसको बहुत ही चिड़चिड़ा हो रहा है और उसको नींद उड़ी जा रही है और सर में दर्द हो रहा है और किसी चीज पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है और बाज़ोगात बहुत से लोगों को मतली होने लगती है। लेकिन मैंने कहा कि सब ज्यादातर एक हफ्ते या बहुत हुआ तो एक महीने तक होते हैं, कम हो बेश किसी को कम होते हैं किसी को कुछ होते हैं। बहरहाल सिगरेट नोशी उस लिहाज से छोड़ी जा सकती है। अलबत्ता यह और बात बता दी जाए कि जैसे हमारे कितने उलमा ऐसे गुजरे हैं, जो आयतुल्ला सैयद मोहम्मद हुज्जत कोहकमरी, कोहकमर असल में तबरेज का ईरान का एक इलाका है, वहां ये आयतुल्ला मोहम्मद हुज्जत कोहकमरी थे। यानी इतने बड़े मुज्तहिद थे कि जब आयतुल्ला हुसैन बरोजर्दी को इनके इंतकाल की खबर मिली थी तो क्योंकि इनका नाम कोहकमरी था तो उन्होंने का जुमला कहा था कमरम शिकस्त, आज मेरी कमर टूट गई कोहकमरी के इंतकाल के बाद। कोहकमर तो बहरहाल इलाके का नाम है। आयतुल्ला सैयद मोहम्मद हुज्जत इनका वही ये हैं जो जिनका मदरसा हुज्जतिया कुम के अंदर बहुत मशहूर है, ये तो पहले का था और ये मौजूदा इसकी जो सूरत हाल है बहुत मशहूर मदरसा है और ये दरस खारिज आयतुल्ला सैयद मोहम्मद हुज्जत कोहकमरी दे रहे हैं। इतने इस लिहाज से आयतुल्ला शहीद मुर्तजा मुतहरी ने अपने किताब के अंदर इनका वाकया लिखा है कि इस कदर चेन स्मोकर थे कि जब काफी इनके फेफड़े खराब हो गए थे तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको सिगरेट तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इससे आपके फेफड़े मुतासिर हो रहे हैं। तो इन्होंने एक जुमला कहा था कि ऐसे फेफड़ों को मुझे करना ही क्या कि मैं फिर सिगरेट ही ना पी सकूं। तो लेकिन ये कि उस जमाने में जो भी बहरहाल इसका जो नुकसान था, डॉक्टरों ने कहा नहीं ये नुकसान होगा, कहा अच्छा ये नुकसान होगा ये तय है बिल्कुल, कहा जी हाँ तय है। तो उन्होंने इनकी मिसाल दी जाती, उसी वक्त उसी सेकंड इन्होंने सिगरेट छोड़ दी थी। यानी इतना सख्ती के साथ दीन के जब मालूम है कि इसका नुकसान मुतहक्किक हो गया है, एक तो ये कि होगा मुस्तकबिल में होगा, उस जमाने में असल में पुराने अदवार थे, इतने डेटा और चीजें जमा नहीं थी और इतना इसके मुतालिक चीजें जमा नहीं हुई थी, जैसे कि आयतुल्ला नासिर मकारिम ने कहा कि पहले हमने ये दिया था लेकिन अब नुकसानात बहुत वाजे हो गए, लेकिन उस जमाने में इतने ज्यादा वाजे नहीं थे तो उलमा ने सरीहन इसके हराम होने का फतवा भी नहीं दिया। तो जिस तरह से भी लोगों ने सिगरेट छोड़ी, हमारे मदरसतुल कायम के जो सरपरस्ते आला हुज्जतुल इस्लाम उल मुस्लिमीन मौलाना गुलाम अली वजीरी साहब क़िबला, खुदा इनको तूलो उम्र नसीब फरमाए और सेहतियाबी अता करे, आजकल बीमार रहते हैं इस वजह से आप लोगों की खिदमत में हाजिर नहीं हो सक रहे हैं दर्स वगैरह के लिए। तो इनके मुतालिक भी यही मिलता है कि मौलाना भी बहुत पिया करते थे और फिर जब डॉक्टर ने कहा नहीं आप बाईपास भी हुआ फिर इसके बाद इनका, तो कहा नहीं नहीं पी सकते अब आप, वो उन्हें उसी वक्त मौलाना ने सिगरेट छोड़ दी जैसे ही इनको नुकसान का अपने वो हुआ बल्कि कह रहे थे कि शायद मेरी निगाह में तो मैं गैर आदिल हो जाऊंगा, यानी लोग अदालत की वजह से मेरे पास मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, और जब मुझे पता है कि इससे मुझे नुकसान होगा फिर भी मैं अगर मैंने जारी रखा तो मैं सिफत अदालत से ना निकल जाऊं। तो इस तरह से भी लोगों ने छोड़ी हैं सिगरेट्स एक एक सेकंड के अंदर। देख तरीका ये भी, बहुत सी खवातीन बहुत परेशान होती हैं तो अपने शौहरों के साथ फिर ये वाला सलूक करती हैं, वो भी एक जंगला इनके तान दिया जाता है कि आप कम से कम ये सिगरेट उस अंदाज से नहीं पियेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब योगा अगर कर लिया जाए तो योगा से भी जो है सिगरेट नोशी से इंसान बच सकता है कुछ दिनों बाद, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ने किया था 1 साल तक योगा करते रहे, लोगों ने पूछा कि आप सिगरेट छोड़ दी, उन्होंने कहा नहीं, बल्कि यहां तक होने लगा कि अब मैं सर के बल खड़ा होकर भी सिगरेट पी सकता हूँ, इससे फर्क ये पड़ गया। तो बहरहाल सिगरेट योगा से भी कुछ लोग कहते हैं कि बहरहाल इससे फायदा होता है। सिगरेट के मुतबादिल वो है ना कि नेमुल बदल को देख के तौबा करेगा मीर, यानी कोई ना कोई नेमुल बदल बताया जाए उनको फिर वो तौबा करेंगे। तो सिगरेट के मुतबादिल जो चीजें, बहरहाल अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, निकोटीन पैच आ गया है कि ठीक है धुआं बराह रास्त नहीं लेकिन वो स्लो रिलीज निकोटीन इसमें से जिस्म के अंदर जाती जाती है, और वो सिम्टम्स आपके जो विदड्रॉल के होते हैं इसके वो कंट्रोल हो जाते हैं। इसकी च्युइंगम्स भी आ गई हैं, कुछ इसके स्प्रेज भी आ गए हैं, नेजल स्प्रेज भी आ गए हैं, लॉजेंजेस भी हैं, बहुत सारी वो डॉक्टर हजरात से डिस्कस हो सकती हैं कि क्या चीज की जाए। तो दुकानों के अंदर इस तरह से बहुत से दुकान में जो सिगरेट होती है फबे आइए आला रब्बे को तो कज़े बहन की भी लगा होती है आयत, 5 सिगरेट छालिया सारी चीजें यहाँ पे दस्तियाब हैं। तो सिगरेट इस तरह से बनाकर देना, तो ये भी बहुत सारे साहिबान ईमान ने सवालात किए हैं मराजे से, इतना वक्त हमारे पास नहीं कि सबको पढ़ें, लेकिन बहरहाल के रहबर मौजम ने भी इसकी खरीदो फरोख्त के लिहाज से, अलबत्ता ये कि बहुत सी हुकूमतें ऐसी हैं कि जहां पर इसकी पाबंदी भी कानून के अंदर है तो वहां कानून के लिहाज से उसकी पासदारी की जाए, लेकिन असलन इसकी खरीदो फरोख्त के अंदर ये हलाल है, इससे जो इनकम भी होती है वो भी हलाल शुमार होती है। एक सवाल बस आखिरी में ये बचता है कि बहुत से उलमा फिर सिगरेट क्यों पीते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना कि बहुत से उलमा पहले भी पीते थे, चेन स्मोकर्स भी थे, अभी भी पीते हैं, तो उनके फतवे में जब तक कि उन्हें इत्मीनान और यकीन नहीं हो जाता कि मुझे इतना इतना पीने से नुकसान होगा, ये हर शख्स के मुकल्लफ का अपना जाती मसला है, सिवाय सिर्फ आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी के, सिर्फ उन्होंने ये बात कही है कि बस अब पीना हराम करार दे दिया अपने मुकल्लदीन के लिए, चाहे इब्तदाई तौर पर हो चाहे मोहताद हो यानी पहले से पीता आ रहा हो। लेकिन बाज उलमा वही कहते हैं कि नुकसान को देखा जाएगा, जिसकी अभी हमने तफसील बयान की कि जिस कदर ज्यादा नुकसान होगा, कितनी ज्यादा पीने में नुकसान होगा और कितनी मुद्दत पीने में नुकसान होगा, उसके एतबार से ये हुक्म तब्दील होता रहेगा। बहरहाल ज्यादा बेहतर यही है कि किसी कानूनी पेचीदगी में पड़े बगैर बहरहाल इसका नुकसानदेह होना तो साबित शुदा अमर है, टीवी पर और रिसालों में और हर जगह इंसान थोड़ी सी भी मुताला करे तो इस बात को पढ़ सकता है, और कोई फायदा कोई भी नहीं है सिवाय कि इसके आदी हो गए, और आदी होने में भी लोग कहते हैं कि छोड़ेंगे कैसे, तो हफ्ता और 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन चीजों को छोड़ने में, अपनी सेहत पैसे और सबको बचाया जाए, और ऐसे अस्पतालों का विजिट कर लिया जाए जहां जो कैंसर्स के टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं, जाके एक दफा विजिट करके इंसान देख के आ जाए, कहीं बेहतर नहीं है कि इस चीज को अभी छोड़ दे बनिस्बत कि इस मरहले तक किसी शख्स को जाना पड़ जाए। आप देख रहे हैं करोड़ों बल्कि 1 अरब तक तादाद इसकी 21st सेंचुरी के आखिर तक जो हो जाएगी मरने वालों की, तो यकीनन इसका नुकसान बहुत ज्यादा है, जिससे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यहां पर सिगरेट की हद तक जितने मुमकिन मसले थे वो सारे आपकी खिदमत में हो गए। अब जो और नशावर चीजें और हैं उनकी भी पूरी एक लिस्ट है, इंशाल्लाह उनके कुछ अहकाम, क्योंकि जैसे शराब है तो सिर्फ शराब की हद तक नहीं रहेंगे, हम अल्कोहल, अल्कोहल की टाइप्स, दवाओं के अंदर अल्कोहल, होम्योपैथिक दवाओं में अल्कोहल, उसके नजीस और वो होने के अहकाम, और इस तरह से करके जो दीगर और नशावर चीजें उनके अहकाम इंशाल्लाह अगली नशिस्त में बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन।